रिश्तेदारों में, नौ दोस्त अहबाब में खुशियां मनाई जा रही है। आगे वो यूं कह रहे हैं कि देखो, अब ऐसी अच्छी जिंदगी गुजारना, ऐसी अच्छी जिंदगी गुजारना कि तुम दुनिया में आए थे, रोते हुए आए थे और सब खुशियां मना रहे थे, अब ऐसी अच्छी जिंदगी गुजारना कि तुम दुनिया से जा रहे हो तो तुम हंसते हुए जा रहे हो और दुनिया रो रही हो। ऐसी जिंदगी मत गुजारना कि दुनिया में आए थे तो भी रोते हुए आए थे और जब दुनिया से जा रहे हो तो भी रोते हुए जा रहे हो। इसलिए भाई, ये जो पूरा इज्तिमा है और ये चलना फिरना है, नकलो हरकत है, अल्लाह के रास्ते में जाना है, मकामी मेहनत है, इन तमाम बातों का खुलासा ये है कि हमारी जिंदगी मकसद हयात पर आ जाए और ऐसी अच्छी जिंदगी बना कर जाए कि जब हम दुनिया से जा रहे हो, दुनिया की आँख बंद हो रही हो और आखिरत की आँख खुल रही हो, उस वक्त में हम आखिरत का मंजर देख कर हंस रहे हो और दुनिया वाले रो रहे हो कि बड़ा अच्छा आदमी था, भला आदमी था, दुनिया से चला गया। ऐसी जिंदगी मत गुजारना कि दुनिया में आया था तो भी रोता हुआ आया था और दुनिया से जा रहा है तो भी रोता हुआ जा रहा है। इसलिए कि आखिरत का मंजर सामने है जिसके नतीजे में अब वो अपना अंजाम देख रहा है तो रो रहा है और दुनिया में वापस आने की तमन्ना कर रहा है कि दुनिया में जाकर के फिर मैं अच्छे अमल करके आऊं, अल्लाह दोबारा भेज। अब अल्लाह ने मौका दिया है, इस मौके को गरिमत समझना है। इसके लिए पूरा मजमा ये तय कर ले कि इंशाल्लाह हम अपनी जिंदगी को बनाते हुए जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है भाई, इंशाल्लाह। इसलिए अपनी जिंदगी को बनाना है, अल्लाह के रास्ते में भी हम इसलिए जा रहे हैं ताकि अपनी जिंदगी को बनाए, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए जा रहे हैं। जिंदगी का बनना क्या है? फरमाया, एक तो हमारा अपना दिल बने, दूसरा हमारे आमाल बने, तीसरा हमारे अखलाक बने और चौथा हमारी फिक्र और सोच बने। हमारा दिल बनने का क्या माना है? फरमाया, हमारे दिलों का रुख। और ये सब की जरूरत की बातें हैं, जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे उनके लिए भी और जो अपने घरों को वापस जा रहे उनके लिए भी। इसलिए कि अल्लाह के रास्ते में तो इसकी मश्क करने के लिए जाना है, ऐसी अच्छी मश्क हो जाए कि जिसके नतीजे में मौत तक हमें इन अमलों का करना आसान हो जाए। इसलिए हम फरमाए, एक तो अपना दिल बनाना है, बदन से निकलने वाले अमाल बनाने हैं, अखलाक बनाने हैं, हमारी सोच और अपनी फिक्र बनाना है। हमारा दिल क्या बनाना है? फरमाया, हमारे दिल का रुख मखलूक से खालिक की तरफ हो जाए, माल से आमाल की तरफ हो जाए और दुनिया से आखिरत की तरफ हो जाए। ये दिल का बनना है कि दिल का रुख इस तरीके से हो जाए, मखलूक से खालिक की तरफ, माल से आमाल की तरफ, दुनिया से आखिरत की तरफ। इसी तरीके से हमारे आमाल, हमारे बदन से निकलने वाले आमाल, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साचे में और आपके तरीके पर आ जाए, आपके साचे में ढल जाए और आपके तरीके के मुताबिक आ जाए। और लोगों के साथ का हमारा बर्ताव, फरमाया, वो ऐसा अच्छा हो जाए जिससे अल्लाह के बंदे भी राजी हो जाए और अल्लाह भी राजी हो जाए। चौथी बात जो हमें अपने अंदर पैदा करनी है वो ये, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जो फिक्र था, आप वाला गम था, आप वाला दर्द था, वो फिकर, वो गम, वो दर्द मुझे और आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को मिल जाए। क्या गम, क्या फिकर, क्या दर्द था? फरमाया, दुनिया में बसने वाला एक एक इंसान अल्लाह के अजाब से बचकर अल्लाह की रहमत के आगोश में आ जाए, जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए, ये फिकर, ये गम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी था और इसी तरीके से तमाम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन को था, ताबीन को, तबे ताबीन को, औलिया को। और दावत के इस मुबारक मेहनत के जरिए से ये आप वाली सौगात और आप वाली मीरास ये हर फर्द उम्मत को मिल जाए, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, जवानों को, हर एक के अंदर ये जिंदा हो जाए। ये हमारे इस काम का मकसूद है और इसके जरिए से यही बात चाही जा रही है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया, आप इस काम से क्या चाहते हैं, आप इस काम से क्या चाहते हैं, आपने फरमाया, मैं इस काम से ये चाहता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा वहां पहुंच जाए जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल के वक्त में उम्मत को छोड़कर गए थे। جب آپ کا وصال ہوا امت کو کہاں چھوڑ کے گئے تھے؟ فرمایا مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، شہریوں میں، دیہاتیوں میں، اور جو جس شعبے میں لگ رہا تھا، تاجروں میں، مزدوروں میں، کاشتکاروں میں، ہر ایک میں 100% کامل اور مکمل حقیقت والا دین تھا۔ دوسرا، ہر کوئی اپنے دین کو سیکھ رہا تھا۔ تیسرا، ہر کوئی اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا کہ یہ دین ہر ایک تک پہنچے۔ اس کے لیے اپنی جان لگا رہا تھا، اپنا مال لگا رہا تھا، اپنی صلاحیت لگا رہا تھا۔ یہ چیزیں پھر دوبارہ پوری امت مسلمہ کے مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں زندہ ہو جائے۔ یہ ہمارے اس کام کی بنیاد ہے۔ اس کے لیے بھائی، یہ اللہ کے راستے میں جانے والے حضرات بھی طے کرے، اور واپس گھروں کو جانے والا مجمع بھی طے کرے کہ انشاءاللہ جو باتیں ہمارے سامنے آئے گی، ان باتوں کی رعایت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ کیوں بھائی؟ گزاریں گے انشاءاللہ۔ بھائی، اب یہ چاروں بنیادیں ہماری ٹھیک ہو جائے، ہمارا ایمان یقین بھی بن جائے، اعمال بھی درست ہو جائے، اخلاق بھی درست ہو جائے، اسی طرح ہمیں آپ والی فکر، آپ والا درد مل جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے دیکھو، ایک تو اچھا وقت لگانا ہے اللہ کے راستے میں جا کر۔ عام طور سے شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندہ اور لوگ اللہ کے راستے میں نکلے نہ نکلے، اس کی کوشش ہوتی ہے۔ نکل گیا تو نکلنے کے بعد اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ عمل میں نہ لگے، عمل میں لگنے نہیں دیتا۔ عمل میں لگ گئے، عمل ہو گیا، تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں جو ہے لگا کر کے، کوشش یہ ہوتی ہے اس کے کھاتے میں باقی نہ رہے، اس کے کھاتے سے نکل جائے۔ اس لیے اگر ہم نے یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں، اگر ان باتوں کی رعایت کے ساتھ وقت لگائیں گے، تو انشاءاللہ عمل کرنے کا جذبہ بھی بنتا رہے گا، عمل کی توفیق بھی ملتی رہے گی، اور عمل انشاءاللہ کھاتے میں جمع بھی رہے گا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس کے لیے دیکھو، سب سے پہلے تو اپنی نیت بنانا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ آدمی جیسی نیت کرتا ہے، ویسا نتیجہ اور ثمرہ مرتب ہوتا ہے، اور اللہ اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ وانما لكل امرئ ما نوى، آدمی جس کی چیز کی نیت کرے گا، اللہ وہ چیز اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم اللہ کے راستے میں کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بنانے کے لیے۔ اور بنانے میں نے بات بتائی، ایک ہمارے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف ہو جائے، مال سے اعمال کی طرف ہو جائے، دنیا سے آخرت کی طرف ہو جائے۔ ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، ہمارے اخلاق حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے بن جائے، جس سے مخلوق اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ اور ہمیں اس راستے میں چلتے ہوئے وہ فکر نصیب ہو جائے، وہ درد اور غم مل جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا، اور آپ کے راستے سے صحابہ میں منتقل ہوا تھا، وہ حصہ مجھے اور آپ کو بھی مل جائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اچھا، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمارے 6 بنیادی صفات ہے۔ ان 6 بنیادی صفات کو سامنے رکھ کر ہم چلیں گے تو ان کے ذریعے سے ہمیں پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ 6 بڑے بڑے دروازے ہیں دین کے بڑے بڑے اعمال تک پہنچنے کے لیے۔ اگر ہم نے ان کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو چلانا شروع کیا، تو انشاءاللہ اس کے راستے سے پورے دین پر چلنا ہمارے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز دیکھو، 70 فٹ کی، 80 فٹ کی رسی ہو، الجھ گئی ہو، اس کو سلجھانا ہے۔ اس کے لیے ایک ادھر سے کھینچے، ایک ادھر سے کھینچے، تو یہ سلجھے گی نہیں بلکہ اور زیادہ الجھ جائے گی۔ اس کے سلجھانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ اس رسی کا سیرا پکڑ لو، اور سیرا پکڑ کر اس کو کھولنا شروع کرو، تھوڑے سے وقت میں یہ رسی پوری کھل جائے گی۔ اسی طرح میرے بزرگوں، آج ہماری 60 سالہ 70 سالہ زندگی پوری الجھی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آخرت کی لامحدود زندگی بھی الجھی ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی سلجھ جائے، اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے अल्लाह ताला रब है, तो रब होने की वजह से बंदे पर बड़े मेहरबान हैं। उस मेहरबानी की वजह से जिस वक्त में भी अपने बंदू की जो जरूरत होती है, अल्लाह अपने खास बंदू के दिलों पर वो बात इल्का फरमाते हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने उम्मत की जरूरत का जो जो जरूरत थी, उस जरूरत के एतबार से अल्लाह ताला ने अपने जमाने के बुजुर्गों के दिलों पर इस बात को खोला है कि अगर उम्मत इसको बुनियाद बनाकर चलना शुरू करेगी, इसके नतीजे में 100% इनकी जिंदगी में दीन भी आ जाएगा, इनका अमल भी मकबूल हो जाएगा, और उम्मत की इज्तिमाई जो पारा पारा हुई है, टूट चुकी है, बिखर चुकी है, अगर इन 6 सिफात को बुनियाद बनाकर ये मेहनत शुरू कर देगी तो इसके नतीजे में उम्मत मुज्तमे हो जाएगी, एक जिस्म की तरह हो जाएगी। इतने ताकतवर ये 6 सिफात है, तो पूरा मजमा ये तय करे इंशाअल्लाह हम इन 6 सिफात को बुनियाद बनाकर सामने रखकर अपनी जिंदगी को ठीक करेंगे, करेंगे वह इंशाअल्लाह। अब इसके लिए पहला नंबर और पहली सिफत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान का कलमा है। हर मुसलमान अपने कलमे को ठीक करे। आज देखो कलमा हम जबान से पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं बचपन में कलमा सीखा था, उसके ऊपर ख्याल रखा नहीं, जिसके नतीजे में कलमे के अल्फाज भी ठीक नहीं है। इसलिए पहली जिम्मेदारी है कलमे के अल्फाज को ठीक करना। कलमे के अल्फाज ठीक करने के बाद ये कलमे के इसका तर्जमा मालूम होना चाहिए। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के रसूल है, जो पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए तशरीफ लाए हैं। अब कयामत तक के आने वाले इंसानों की नजात का मदार आपके पीछे चलने में है, तो दूसरा इसका तर्जमा मालूम होना चाहिए। तीसरा इसका मतलब ये हमारे दिल के अंदर उतर जाना चाहिए, खाली जबान पर नहीं। इसलिए कि कलमे के माना अगर हमारे दिमाग में है तो ये ईमान का मफहूम है। जबान पर है इसके अल्फाज है, अगर ये किताबों में है इसके नकूश है। ये दावत और तबलीग के जरिए से इस बात की मेहनत हो रही है ये कलमा हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। इसलिए कि कलमा जब दिल में उतरेगा जिंदगी को बदल देगा, और कलमा दिल में उतरे बगैर जिंदगी बदलना मुश्किल है। इसलिए अगर हम ये चाहें कि हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी जिंदगी बन जाए, तो मेहनत करके कलमे को दिल में उतारना। उसका मतलब क्या है? ला इलाहा, अल्लाह के अलावा जितना जो कुछ है वो सब मखलूक है। अल्लाह खालिक है, बाकी सब मखलूक है। मखलूक के माना ये है चाहे वो छोटी शक्ल हो चाहे बड़ी शक्ल हो, एक जर्रे से लेकर पहाड़ तक, कतरे से लेकर समंदर तक, जमीन से लेकर आसमान तक, चूटी से लेकर जिब्रील अमीन तक, ये जितना जो कुछ फैला हुआ नक्शा है वो सब का सब मखलूक है। इसके हाथ में ना नफा है ना नुकसान है, ना मारना है ना जिलाना है, ना जो है दोबारा उठाना है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। करने वाली जात सिर्फ तने तना इल्लल्लाह, एक अल्लाह है। तो सब का यकीन दिल से निकले, अपना दिल साफ हो जाए गैरुल्लाह से, और एक अल्लाह की जात का यकीन दिल में उतर जाए। अल्लाह के अलावा जो कुछ है, फरमाया कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होता, इल्लल्लाह, एक अकेले अल्लाह ही से सब कुछ होता है, इसका यकीन हमारे दिलों में उतर जाए। दूसरा यकीन क्या उतरे, मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिंदगी गुजारने के जितने तरीके हैं, दुनिया में जितने रस्मों रिवाज है, जितने जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, वो सारे तरीके नाकामी तक पहुंचाने वाले हैं, हलाकत तक पहुंचाने वाले हैं, और जो है खुसरान तक पहुंचाने वाले हैं, कामयाबी तक, अल्लाह तक, जन्नत तक पहुंचाने वाला एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। ये यकीन हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। लेकिन भाई मैंने आपसे कह दिया और आपने सुन लिया, इससे ये यकीन दिल में उतरने का एक जरिया है, लेकिन कमा हक्का कब उतरेगा? जब इसको बार बार सुनेंगे, और बार बार इसको बुलाएंगे, इसकी मेहनत करेंगे, तो ये यकीन दिल के अंदर उतरना शुरू होगा। इसलिए उतारने का क्या रास्ता है? उतारने का रास्ता यह है कि गैरुल्लाह का यकीन लाना नहीं पड़ता, वो तो आता है। अल्लाह का यकीन आता नहीं, उसको लाना पड़ता है। तो जिसका आया है उसकी तो देनी है कुर्बानी, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम ही। जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, वो जिसका यकीन आया है उसकी कुर्बानी देकर जा रहे हैं। अब जिसका यकीन लाना है उसकी दावत दे, तो जितना उसको बोलेंगे, जितना उसको सुनेंगे, इतना इसके दिल के अंदर उतरेगा। इसलिए कि दिल में उतारने के चार रास्ते हैं, आंख, कान, जुबान और दिमाग। ये चार रास्तों को ईमान की मेहनत में लगाना। आंख से अल्लाह की बनाई हुई ये यादगारें हैं, ये अल्लाह की यादगार है, अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया है, अल्लाह की निशानियां हैं। ईमान की नजर से देखना, आसमान को ईमान की नजर से देखना। हमने ये जो है पिंडाल बनाया, देखो इसके लिए कितने सुतून लगे। अल्लाह ने जो है आसमान बनाया, एक भी वहां सुतून नहीं है। बगैर सुभान तेरी कुदरत, अल्लाह तो कितनी बड़ी कुदरत वाला है। इसी तरह जो है जमीन फैलाई, एक पानी से जो है वो एक बाग है, जहां चीकू भी उग रहा है, संतरा भी उग रहा है, सेब भी उग रहा है, इसी तरीके से और बहुत सारे मेवे बन रहे हैं। पानी एक है, संतरे की मिठास अलग है, सेब की मिठास अलग है, चीकू की मिठास अलग है। सुभान तेरी कुदरत। तो ईमान की नजर से जितना इसको देखेंगे, इसको बोलेंगे, इसको सुनेंगे, इतना ये बात दिल के अंदर उतरती जाएगी। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलकर इसी को बोलना है, इसी को सुनना है, और इसी को सोचना है, इसी ईमान की नजर से देखना है। जितना इसको बोलेंगे सुनेंगे, इतना दिल के अंदर उतरता जाएगा। आज तो चूंकि हमने उस लाइन की मेहनत नहीं की है, इसलिए हमारे दिल का हाल यह है कि जब 100 मरतबा कहेंगे ना, 100 मरतबा अल्लाह ही से होता है, तब जाकर के 1 मरतबा अंदर का दिल कहेगा हाँ भाई अल्लाह से होता है, हाँ भाई अल्लाह से होता है। जब 100 मरतबा कहेंगे, तब जाकर के अंदर का जमीर यू कहेगा हाँ भाई अल्लाह से होता है। तो बताओ कितनी मरतबा जरूरत है। इसलिए इसी को बोलना है, इसी को सुनना है, इसी को जो है सोचना है, और इसी ईमान की नजर से जो है कायनात को देखना है। इस रास्ते से इसको दिल में उतारना है। तो ये सबसे पहले मेहनत किस पर करना है भाई? ये हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके ऊपर मेहनत करना है। मैं आपको बहुत मुख्तसर मुख्तसर चीजें बताता हूँ, उन चीजों की रियायत के साथ हमारा अपना वक्त लगे। हमारी बॉडी का इस्तेमाल सही हो, इसके लिए दूसरी मेहनत हमें नमाज की करना है। इसलिए कि कलमा कहता है अपने आप को पाबंद बनाओ, नमाज कहती है अपने आप को ऐसे पाबंद बनाओ, तुम्हारी आंख भी जो है सही देखे, तुम्हारा कान गलत न सुने, तुम्हारे हाथ जहां बांधने को बताया। अलगरज नमाज के रास्ते से बॉडी का इस्तेमाल सही करने की तालीम है। जिसकी नमाज सही बन गई उसकी जिंदगी सही बन जाएगी, जिसकी नमाज सही नहीं बनी उसकी जिंदगी सही नहीं बन सकती। इसलिए दूसरी मेहनत जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे उनकी जरूरत की भी चीज है, जो अपने घरों को वापस जा रहे उनकी जरूरत की भी चीज है कि मेहनत का मैदान किसको बनाए भाई? नमाज को। अगर हमारे दिल में यकीन पैदा हो गया करने धरने वाली जात अल्लाह की है, सारे खजानों का मालिक अल्लाह है, अल्लाह से लेने का रास्ता वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी है, आप वाली जिंदगी में बहुत बड़ा अमल वो नमाज का है। नमाज के रास्ते से मैं अल्लाह से करीब भी होऊंगा, नमाज के रास्ते से मैं अपनी जरूरतों को पूरा भी करवाऊंगा। इसलिए दूसरी मेहनत जो अल्लाह के रास्ते में जाकर के करना है वो अपनी नमाजों पर करना है। नमाज अगर जानदार बन गई उसके 3 बड़े बड़े फायदे होंगे, 3 बड़े बड़े। एक तो नमाज के रास्ते से अंदर का जितना बिगाड़ है, हसद है, किना है, रजाई जितने भी है, ये नमाज अगर जानदार बन गई, इस नमाज के रास्ते से अंदर के सारे रजाइल अल्लाह निकाल देंगे। दूसरा, नमाज के रास्ते से जितनी खूबियां है वो खूबियां सारी अल्लाह अंदर पैदा करेंगे, ये पहला फायदा होगा। दूसरा फायदा, नमाज के रास्ते से अल्लाह दिल में हिदायत का नूर अता फरमाएंगे। हिदायत का नूर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत का नूर। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, قیامت کے میدان میں ہر آدمی اپنے ہدایت کے نور میں چلے گا، جس طرح دنیا میں گاڑی اپنے روشنی میں چلتی ہے، اپنے نور میں چلتی ہے، ایسے قیامت میں ہر آدمی اپنے ہدایت کے نور میں چلے گا۔ یہ ہدایت کے نور کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ نماز ہے، اس نماز کے ذریعے سے ہدایت کا نور آئے گا۔ اور دیکھو دل میں ہدایت کا نور آ گیا، اب دوستو بزرگو آدمی کا دل آدمی کی غلط رہبری نہیں کرے گا۔ لوگ چاہے کتنا ہی غلط رخ پر ڈالنا چاہے، لیکن اندر دل میں ہدایت کا نور آ گیا تو فرمایا یہ آدمی صحیح چلے گا۔ اسی لیے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، یہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس لیے ہدایت کا نور اللہ سینے میں عطا فرمائیں گے۔ تیسری چیز اللہ رب العزت جو عطا فرمائیں گے وہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا۔ دکان سے فائدہ اٹھانے کا نام تجارت ہے، زمیندار زمین سے فائدہ اٹھانے کا نام زراعت ہے، ملک سے فائدہ اٹھانے کا نام ملازمت اور سیاست ہے، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا نام نماز ہے۔ اگر ہماری نماز جاندار بن گئی تو ایاک نعبد وایاک نستعین، اللہ تجھ ہی کو مانتے ہیں اور تیری ہی مانتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ تجھ ہی کو مانیں گے اور تیری ہی مانیں گے اور تجھ ہی سے مانگیں گے، ایاک وایاک نستعین۔ یہ پوری دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ دنیا میں جتنی طاقتیں ہیں یہ ساری کی ساری طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کا جالا ہے۔ اس لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ ہی کو ماننا، اللہ ہی کی ماننا اور اللہ ہی سے مانگنا، یہ جو ہے سبق دیا جا رہا ہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے۔ اس لیے تیسرا انعام جو نماز پر ملے گا وہ کیا؟ فرمایا آدمی اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے پورا مجمع یہ طے کرے دوسری محنت کس پر کریں گے بھائی؟ اپنی نماز پر محنت کریں گے کہ میری نماز جاندار بن جائے۔ 40 دن میں، 4 مہینے میں ہمارا ہر ساتھی اس کی نماز، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کا سجدہ، نماز کے اندر کی ضروری چیزیں، وہ ساری چیزیں جو ہے اچھی طریقے سے سیکھ لے اور محنت کر کے اپنے نماز کو جاندار بنا لے۔ نماز جاندار بنے گی، فرمایا اس کو اس میں کلمے والا یقین آ جائے، مسائل والی شکل آ جائے، فضائل کا شوق آ جائے، اسی طرح اللہ کا دھیان آ جائے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ نماز جاندار بن گئی، اس نماز سے فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ اس لیے 4 مہینہ بڑا اچھا موقع ہے، اپنے گھروں کو جانے والا مجمع بھی یہ طے کرے ہم بھی موت تک اپنی نماز پر محنت کرنے کا ارادہ لے کر کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ۔ اچھا، اب نماز کو جاندار بنانے کے لیے ایک تو علم کی ضرورت ہے کہ بھائی اپنی نماز کو سیکھے، اللہ کے راستے میں جا کر کے بھی، اپنے مقام پر بھی اپنے علماء سے اپنی نماز کو سیکھے اور اسی نماز کے مسائل سیکھے اور نماز کے فضائل جو تعلیم کے حلقوں میں دھیان توجہ کے ساتھ میں سنے، اور نماز کا ظاہر بھی ٹھیک کرے وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک، اور اندر دھیان جمانے کے لیے جب تنہائیوں میں بیٹھ کر ایک تو اللہ کا ذکر کرنا۔ نماز میں دھیان کب جمے گا؟ جب نماز کے باہر اپنا وقت فارغ کریں گے، اس کے لیے ہمیں ایک تو ذکر کے لیے وقت فارغ کرنا ہے۔ اس لیے کہ جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کو باہر محنت کریں گے وہ چیزیں نماز کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ نماز میں ایک تو ذکر ہے تو باہر ایک ذکر کی مشق کرنی ہے۔ اس کے لیے پورا مجمع یہ طے کرے روزانہ تھوڑا وقت فارغ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس کے لیے 3 تسبیح بتائی جاتی، 3 تسبیح۔ تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کے ذریعے سے دل میں اللہ کی عظمت آئے گی، اندر کا اندھیرا کٹے گا، نور آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ میں، عظمت کے ساتھ میں درود شریف کی 1 تسبیح صبح میں، 1 تسبیح شام کو پڑھنا ہے۔ 1 تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں ہر چھوٹے بڑے جان کر انجانے میں جو مجھ سے قصور ہے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر آدمی اس کی پابندی کرتا رہے گا اللہ اس کے ذریعے سے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دیں گے، طبعی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے پورا مجمع یہ طے کرے یہ باہر ذکر کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں گے تو نماز میں اللہ کا دھیان جمنے لگے گا۔ बाहर ध्यान जमाने की मशक करेंगे, नमाज में अल्लाह का ध्यान जमेगा। इसी तरीके से नमाज में कुरान पाक की तिलावत होती है तो रोजाना वक्त फारिग करके कुरान पाक की तिलावत का एहतिमाम करें। जो पढ़े हुए हजरात है, गैर हाफिज है, एक पारा पढ़ने का एहतिमाम करें इस ध्यान के साथ कि मैं अल्लाह को सुना रहा हूँ, अल्लाह मेरा कुरान सुन रहा है। इस ध्यान के साथ सुन, ये अल्लाह मुझे कुरान सुना रहा है, मैं अल्लाह का कुरान सुन रहा हूँ। जो हाफिज कुरान है वो रोजाना 3 पारे पढ़ने का एहतिमाम करे। कुछ वक्त फारिग, कुछ वक्त ऐसा भी निकाले हफाज किराम कि वो तन्हाई में नमाज के अंदर कुरान पढ़ने का अपना मामूल बनाए, इसलिए कि कुरान के पढ़ने का अजर बढ़ जाता है नमाज में। और ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की का मामूल था, कुरान रात में और नमाज में पढ़ते थे और उससे लज्जत लेते थे। ये उनका जिक्र होता था रात में और दिन में उनके लिए इल्म होता था, उसकी रोशनी में अपना काम करते थे। इसके लिए मेरे भाइयों, ये पूरा बैठा मजमा ये तय करे कि हमें रोजाना तन्हाई में बैठकर ये कुरान पाक की तिलावत का एहतिमाम करेंगे भाई इंशाल्लाह। इसी के साथ में जो पढ़े हुए हजरात नहीं है वो भी आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा फारिग करके कुरान सीखने का ये जो एहतिमाम कर, ये क्या बात हुई? दुनिया में आए कुरान नहीं सीखा, दुनिया में आए कुरान नहीं सीखा, ये तो कितनी जो है महरूमी की बात है। और कुरान को तो अल्लाह ने आसान किया है, 9 साल का, 10 साल का बच्चा ये मेहनत करता है, पूरा कुरान अपने अंदर ले लेता है। तो अगर ये बेटा मजमा या जो हजरात पढ़े हुए नहीं है, अगर वो जो है थोड़ा एक घंटा रोजाना पारी करेंगे, मैं यकीन के साथ में कहता हूँ 4 महीना मेहनत कर लो, इसके रास्ते से आपका कुरान पढ़ना आसान हो जाएगा। 4 महीने में कुरान पढ़ने वाला आदमी बन जाएगा। इसके लिए कोई मुसलमान ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुरान करीम को न पढ़ता हो। जिसको कुरान से मोहब्बत उसको अल्लाह से मोहब्बत, जिसको कुरान से मोहब्बत नहीं उसको अल्लाह से मोहब्बत नहीं। इसके लिए अपनी मस्जिद के अइम्मा, अपनी जगह पर उलेमा, उनके साथ हमारा रब्त हो। इसी तरह जो जमात अल्लाह के रास्ते में जा रही है, अगर खुशामद करके अपने साथ उलेमा को लेकर के जाए, उलेमा अगर उनके साथ में नहीं है तो आपकी जमाते जहां जाए वहां के उलेमा की खुशामद करके उनको अपने साथ में रखना और वहां के अइम्मा को अपने साथ में, उनके जरिए से अपना दीन सीखना, कुरान सीखना, इंशाल्लाह इसके जरिए से भी बहुत चीजें आप हासिल कर सकते हैं, करेंगे भाई। और जितना हमारा उलमा के साथ रब्त रहेगा, फरमाए बातिल के फितनों से हमारी हिफाजत हो जाएगी। और अगर हमारा उलमा के साथ में रब्त न रहा तो फितने उचक लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए उलमा से रब्त रख करके मकाम पर भी सीखना है और अल्लाह के रास्ते में निकल करके भी इसका एहतिमाम करना है। इसी के साथ साथ में भाई रोजाना, रोजाना अल्लाह के ताल्लुक को बढ़ाने के लिए आधा घंटा, 15 मिनट 20 मिनट जितना अल्लाह तौफीक दे, दिल लगाकर दुआ मांगने का एहतिमाम करें, करेंगे भाई इंशाल्लाह। ये मैंने थोड़ा सा ये जो इल्म और जिक्र पर बात कर ली। और इसी तरीके अपने अखलाक अच्छे बनाना, अपने अखलाक अच्छे बनाने की मेहनत करना, मेरी वजह से किसी को तकलीफ न पहुंचे। मुसलमान की तारीफ बताई कि उसके हाथ से, उसकी जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे, इसलिए ऐसा अपनी जिंदगी को बनाने का एहतिमाम। और इसी के साथ साथ मैं दूसरों को नफा पहुंचाऊं, मैं दूसरों को नफा पहुंचाने वाला बनूं। इसी तरीके 5वीं चीज जिस पर मेहनत करना है, फरमाए वो इखलास, अल्लाह को राजी करने का जज्बा, कि वे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह को राजी करने का जज्बा पैदा हो और इसी की मेहनत हो, इसके ऊपर अपनी मेहनत को लगाना है। और छठी बुनियाद, और जो 4 बुनियादों में से मैंने जो चौथी चीज बताई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला फिकर, आप वाला गम, आप वाला दर्द आ जाए, इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलकर हमें एक एक के पास में जाना है, एक एक के दर पर जाना है, जहां मुसलमान मिले वहां जाना है, बैठकर इत्मीनान के साथ, ध्यान के साथ उनको ईमान की बात, आमाल की बात, आखिरत की बात, और यही 6 बुनियाद जो सिफात है उनको फजाइल के साथ और फजाइल की रियायत के साथ हम जितना इसको बोलेंगे, अल्लाह इसको हमारी अपनी जिंदगी में भी उतारेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको उम्मत में जिंदा करेंगे और उसी के रास्ते से सारी खैर भलाई आएगी। इसके लिए जो जमात अल्लाह के रास्ते में जा रही है वो जिस मस्जिद में भी ठहरे, उस मस्जिद के अतराब में जितने मुसलमानों के मकान हैं उनको अपने जमात में जितने साथी है उनके ऊपर जमात, दो दो की जमात बना करके, مکانوں کو تقسیم کر کے ایک ایک کی ملاقات کی ترتیب بنائیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں گئے ہی اس کے لیے کہ ایک ایک مسلمان کے پاس میں جا کر کے ملنا، ایمان کی، اعمال کی، آخرت کی بات کرنا. اس لیے ہمارا اللہ کے راستے میں جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ جو وقت لگے وہ دعوت اللہ میں لگے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں لگے. اور جتنا اللہ کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں گے اتنا ہمارے دلوں میں بھی اللہ محبوب بنتا جائے گا، لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ محبوب بنتا جائے گا. تو ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت دعوت اللہ میں، اللہ کی طرف بلانے میں لگے. دوسرا ہمارا وقت فرمایا دین کو سیکھنے سکھانے میں لگے. اس لیے ہمارے تمام ساتھی سب سے پہلے اپنی نماز کو سیکھے، اور جو ہے موقع مل کی دعائیں سیکھے، دعوت دینا سیکھے. پورا دین سیکھنا ہے، اس کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اس کے فضائل کو سیکھنا ہے. انفرادی وقتوں میں جو باتیں ہمیں نہیں معلوم ہیں اس کو اپنی جماعت میں جو جاننے والے ان سے بیٹھ کر کے اس کو سیکھنا ہے. تو تیسرا ہمارا اس میں وقت لگے، تیسرا ہمارا وقت لگے ذکر، تلاوت، عبادت میں وقت لگے، اور چوتھا خدمت اور اخلاق میں ہمارا وقت لگے. یہ چار عملوں میں ہمارا وقت لگنا چاہیے. رات اور دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 4 گھنٹے دعوت کے لیے ہمارا وقت لگے، 4 گھنٹے سیکھنے سکھانے میں لگائے، 4 گھنٹے ذکر، تلاوت، عبادت میں لگائے، 4 گھنٹے خدمت اور اخلاق کی مشق میں لگائے. کتنے گھنٹے ہوئے بھائی؟ 16 گھنٹے. اب پیچھے بچے 8 گھنٹے. 8 گھنٹے اپنے راحت و آرام کے لیے، انصاف کی بات ہو گئی. اس لیے 16 گھنٹے جب اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے کام میں لگائیں گے، آپ یقین مانو ان عملوں کا رنگ چڑھے گا ہمارے اوپر. اور جتنا ان عملوں کو ایک تو عظمت کے ساتھ کرنا، مجاہدے کے ساتھ کرنا، یقین کے ساتھ میں کرنا، اور اخلاص کے ساتھ کرنا، جب ان عملوں کو ان بنیادوں کے ساتھ کریں گے اللہ 4 انعام عطا فرمائیں گے. ان 4 عملوں کو جو اعمال نبوت ہے، اعمال نصرت ہے، اعمال ہدایت ہے، اعمال مساجد ہے، ان کو 4 چیزوں کی رعایت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، یہ جو اعمال ہے نا، یہ اعمال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نکلے ہوئے ہیں. اس میں آپ والا نور ہے، آپ والی طاقت ہے. عظمت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کرنا. میری دنیا آخرت کے جتنے مسائل ہیں، انفرادی، اجتماعی، ملی، قومی، ملکی، عالمی، سارے مسائل کا حل اللہ نے ان عملوں میں رکھا ہے، اس یقین کے ساتھ میں کرنا. اور اسی طریقے سے فرمایا جو ہے اخلاص کے ساتھ کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مجاہدے کے ساتھ میں کرنا، اس لیے کہ اس میں جو جان پڑتی ہے وہ مجاہدے کے ساتھ میں پڑتی ہے، مجاہدے کے ساتھ. تو 4 بنیادوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ 4 اللہ انعام عطا فرمائیں گے. ایک انعام اللہ عطا فرمائیں گے. سب سے پہلا انعام، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. روز ہم ہدایت میں ترقی کریں گے، اور ہدایت اللہ کے خزانے کی قیمتی دولت ہے اور لامحدود دولت ہے. جتنا آدمی اس کو ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ چلتا رہے گا، اللہ ہدایت کے اعلیٰ مقام تک اس کو پہنچاتے رہیں گے. اور نہ صرف یہ کہ یہ خالی ہدایت پائے گا، اللہ اس کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. یہ پہلا انعام اللہ عطا فرمائیں گے. دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ نے ہماری جو مقدر کی روزی طے کی ہے وہ اللہ برکت والی بنا کر عطا فرمائیں گے، برکت والی بنا کر عطا فرمائیں گے. تیسرا انعام اللہ رب العزت جو عطا فرمائیں گے وہ زندگیوں میں عافیت عطا فرمائیں گے، زندگیوں میں عافیت، الجھنے اللہ عافیت سے بدلیں گے. اور چوتھا انعام اللہ تعالیٰ دعا کے مقام پر پہنچائیں گے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بڑی بات یہ نہیں تھی کہ اللہ نے صحابہ سے ملک فتح کرائے اور ان کے ہاتھوں ملک فتح ہوئے، بڑی بات یہ تھی ہر صحابی مستجاب الدعا تھا. ان کے دو بول پر اللہ بڑے بڑے کام کر دیتا تھا، ان کے دو بول پر اللہ بڑے بڑے کام کر دیتا تھا. یا رب محمد انصر امت محمد، اس جملے پر آسمان سے فرشتے آ جاتے تھے اور کہتے تھے یا اے امت محمد، رب محمد نے تمہاری مدد کے لیے ہم کو اتار دیا. اور فرماتے تھے میں چاہتا ہوں ہمارا جتنا کام کرنے والا عملہ ہے اور مجمع ہے، پوری امت مسلمہ اس کام کو کرتے کرتے دعا کے مقام پر پہنچے. اور مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے اور بندوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے دعا کا، وہ کھل جانا چاہیے. इसलिए ये काम करते करते अल्लाह दुआ के मकाम तक पहुंचाई करेंगे भाई इंशाल्लाह। इसलिए इन चार अमलों में अपना वक्त लगाना है, इनकी रियायत के साथ लगाना है, ये चार इनाम अल्लाह अता फरमाएंगे। चार चीजों से जो इन अमलों के रास्ते से नूर आएगा। अब इस नूर के पीछे बचाने की और इसकी हिफाजत करना है, एयर कंडीशन चल रहा है, ठंडक आ रही है, दरवाजे खुले हैं तो जवानी होगी, उसको बंद करना पड़ेगा। इसके लिए चार चीजों से अपने आप को बचाना है, चार चीजों से अपने आप को बचाना है। दिल के सवाल से बचाना, जबान के सवाल से बचाना, फजूल खर्ची से अपने आप को बचाना, किसी की कोई चीज इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं करना, इसके बचने के काम है। इससे जिंदगी में तकवा आएगा और तकवे पर अल्लाह ताला ने कई इनामात बयान फरमाए, वो अल्लाह अता फरमाएंगे। तो ये बचने की चीजें हैं, ये इससे बचने का एहतमाम करें। चार चीजों में हमारा अपना वक्त कम से कम लगे। हम इंसान है, बशर है, जरूरतें लगी हुई है, लेकिन जरूरत में हमारा बकदरे जरूरत वक्त लगे। खाने पीने में हमारा कम से कम वक्त लगे, सोने में हमारा वक्त कम से कम वक्त लगे। कहते हैं सेहतमंद आदमी के लिए 6 घंटा नींद काफी है, उससे ज्यादा सोना अपनी उम्र को जाया करना है, और जरूरत की बातों में बकदरे जरूरत वक्त लगाना। और इसी तरीके से जो है अपने बशरी तकाजे, नहाना धोना है, पेशाब पखाना, इसमें अपना बकदरे जरूरत वक्त लगाना। चार चीजों में दखलगिरी न करें, एक उम्मत के अमराज बयान न करें, उम्मत के अमराज बयान न करें। देखो हमारा काम मुस्बत अंदाज का है, इस तय उम्मत के सामने आमाल के ऐसे फजाइल सुनावे कि वो मुनकर को छोड़ दे और जो है मारूफ पर आ जाए। बच्चे के हाथ में छुरी आ गई, अब जो है हम छीना झपटी करेंगे तो क्या होगा, उसको चोट लग जाएगी। वो उसके लेने का आसान रास्ता ये है, उसके सामने चॉकलेट पेश कर लो, ये छुरी नीचे रख देगा और चॉकलेट जो है ले लेगा। इसी तरीके से उम्मत को आज मुनकरात महबूब हो गए हैं, महबूब चीज को छेड़ेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। इसका रास्ता क्या है, फरमाया नेक अमलों के फजाइल सुनाए जिसके रास्ते से वो मुनकर छोड़ दे, मारूफ पर आ जाए। नमाज नहीं पढ़ाए, नमाज के फजाइल सुनाए तो नमाज करके नमाज अपने आप छूट जाएगा और नमाज पर आ जाएगा। माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं कर रहा है, माँ बाप के फरमाबरदारी के फजाइल सुनाए, उस पर आ जाएगा। तो बहरहाल उम्मत के अमराज को बयान नहीं करना, फजाइल सुनाना। क्या लोग ऐसा करते वैसा करते, नहीं नहीं, हम जो इसके फजाइल सुनाएंगे उसके रास्ते से। इसी तरीके से हालात हाजरा का तबसरा नहीं करना, हमारी बातें जमीन से नीचे की होगी, आसमान से ऊपर की बातें होगी, इसलिए जो है हालात हाजरा का तबसरा नहीं करना। इसी तरीके सियासी उमूर में दखलगिरी नहीं करना, इख्तिलाफी मसाइल को छेड़ना नहीं। देखो मसाइल को एक तो है सीखना, मसाइल को सीखे बगैर अमल ठीक नहीं होगा, मसाइल और अमल में जान जो पड़ेगी वो फजाइल से पड़ेगी, इसलिए मसाइल को सीखना है, लेकिन इख्तिलाफी मसाइल को छेड़ना नहीं, मजहबी बहस करना नहीं। किसी ने कहा है मजहबी बहस मैंने की नहीं, फालतू अकल मुझ में थी नहीं। हमें अगर कोई उलझे भी, हम उसको कहेंगे कि भाई पहला नंबर ईमान, दूसरा नंबर नमाज, तीसरा इल्म और जिक्र, चौथा इकरार मुस्लिम, पांचवा इखलास नियत, छठा तफरीकी वक्त, चलो भाई हमारे साथ आप कुछ वक्त लगाना। इसलिए भाई इस तरीके से हमारा अपना वक्त लगे इन चीजों की रियायत के साथ, तो इंशाअल्लाह 4 महीने में अल्लाह वो चीज अता फरमाएंगे जिसको मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर 4 महीना ऐसे लगा दे जैसे लगाने के लिए कहां जाता है, अल्लाह वो ईमान का पावर देंगे कि सारी दुनिया मिलकर ईमान से तो क्या हटाए, एक सुन्नत से नहीं हटा सके। इसके लिए पूरा मजमा तय करता है भाई, निकलने वाले भी तय करे और मकाम पर जाने वाले भी तय करे, हम अपनी पूरी जिंदगी इन बुनियादों के साथ लगाएंगे करेंगे भाई इंशाल्लाह। ये दिन भर मेहनत करना है और रातों को उठ करके अल्लाह से मांगने का एहतमाम करना है, इसलिए कि हमारी पूरी मेहनत दावत और दुआ। दिन में मखलूक पर मेहनत करना, रात में खालिक पर मेहनत करना, दिन में मखलूक की खुशामद करना, एक एक अल्लाह से जुड़ जाए, और रात को अल्लाह की खुशामद करना, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की इनायतें हमारी तरफ, पूरी उम्मत की तरफ, उम्मत के रास्ते से पूरी इंसानियत की तरफ मुतवज्जो हो जाए। इसके लिए अल्लाह के सामने आंसू बहाना, अल्लाह के आंसू की बड़ी कीमत है, और जो कुछ मिलता है वो इसी रास्ते से मिलता है। किसी ने कहा है अत्तार हो, रोमी हो, राजी हो के गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाई। इसके लिए पूरा मजमा ये तय करे, रातों को उठकर अल्लाह से मांगने का एहतमाम करेंगे, हमारे काम में जो जान पड़ेगी, हमारे कामों में जो जान पड़ेगी वो रात के रोने से पड़ेगी। इसके लिए पूरा मजमा तय करता है, इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करेंगे, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे।